ओम शांति।
कैसा था ये गीत?
तो बाबा के प्यार के गीत, बाबा के प्यार में आत्माओं को डुबो देते हैं। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं कैसे मुख से। पहली बार ही सुना है हमने भी। तो परमात्मा प्रेम आत्माओं को एक अतीन्द्रिय सुख के सागर में डुबो देता है। ये सागर ऐसा है कि इसमें जितना ही डूबो उतना ही आनंद की अनुभूति होती है। जैसे कोई सागर का, जैसे कोई नमक का पुतला हो और उसे संकल्प आए कि सागर की गहराई कितनी है, जाकर ढूंढू, तो सागर में कूदता है और जैसे जैसे नीचे नीचे जाता है तो क्या होता है उसका? फिर उसका अपना अस्तित्व नहीं रहता, दो नहीं रहते, वहां पर अद्वैत हो जाता है। सागर में नमक का पुतला निकला था किसके लिए? सागर की गहराई मापने के लिए, जो कि सागर अथाह है, ऐसे सागर की गहराई मापने के लिए। और डूबते डूबते अंदर जाते जाते स्वयं ही विलीन हो गया उसमें, समा गया उसमें। तो इसी हॉल में कई सालों पहले आज की अव्यक्त वाणी जो है सुबह की, वह चली थी। इस हॉल में तब कौन बैठा होगा? कौन बैठे थे? 81 में ऑस्ट्रेलिया वाले बैठे थे। ऑस्ट्रेलिया वालों में भी कौन कौन बैठे थे? कुमार बैठे थे, कुमारिया बैठे थे, पांडव बैठे थे, शक्तिया बैठी थी, चांसलर बैठे थे, फरिश्तों की सभा थी। और खिड़कियों से बाहर कौन देख रहा था? खिड़कियों के बाहर से आने की कोशिश कौन कर रहा था पर आ नहीं सका इस संगठन में? रावण। दो, इस मुरली में बाबा पिकनिक भी कर रहे हैं, तो गिफ्ट भी दे रहे, विशेष गिफ्ट, विशेष श्रृंगार भी कर रहे हैं, मंत्र भी दे रहे हैं, राम कथा भी सुना रहे हैं। राम के बारे में बता रहे, तो रावण के बारे में बता रहे, तो सीता के बारे में बता रहे और कुंभकर्ण के बारे में भी बता रहे। थोड़ी भागवत की कृष्ण कथा भी आ गई है बीच में, तो कृष्ण को भी याद किया है। किसको सुना रहे राम कथा? विदेशियों को। और ये जो सभा है, इस सभा का मुखिया कौन बैठा है? कारवा का कप्तान, जिससे बाबा ने विशेष मुलाकात की, निर्मला दीदी से, विशेष आत्माओं की लिस्ट में है। जैसा नाम है, नाम अनुसार ही क्या किया? विजयी बने, दिव्य गुणों से, गुणों में विजयी, समाने और सामना करने की शक्ति से सेवा केंद्र को और या स्थानों को क्या बनाया? निर्विघ्न बनाया। बाप दादा जितनी महिमा करे उतनी कम है, ऐसे बाप के महिमा योग्य रतन हो। प्रत्यक्ष फल दिखाया, इसके लिए बाप दादा खुश है। बच्ची के सिर पर बाप दादा का हाथ सदा ही है। ये चित्र हमेशा पास रखना, अभी भी है कमरे में। तो बाबा ने कहा जैसा नाम है निर्मल, निर्मला, वैसे ही गुण है। हम भी देखते हैं, हमारे पास भी आते हैं दीदी जी, मास दो मास में एक बार। जब आते हैं तो बताकर नहीं आते कि मैं आ रही हूं, चुपचाप बाहर बैठ जाते हैं। जब नंबर आएगा तभी अंदर आएंगे, हमने कहा कि आप डायरेक्ट आ जाओ, परंतु नहीं, अंदर पेपर देकर बाहर ही बैठ जाते हैं। जब नंबर आता है तब अंदर आते हैं। तो निर्मल आश्रम। और किसको याद किया इस मुरली में बाबा ने? किससे मुलाकात की? दीदी दादी से? उनसे भी मुलाकात की ना। वायरलेस का सेट 70-80 या 60-70 के दशक में बहुत दूर हिमालय से एक बार एक सन्यासी जो बचपन से हिमालय में चला गया तपस्या करने और कई सालों तक वहां ही रहा, जब तक वो युवा ना हो जाए तब तक वहां तपस्या करता रहा हिमालय की कंदरों में गुफाओं में। और जब युवा हुआ तो उसे संकल्प आया कि अभी थोड़ा शहर की तरफ चलते हैं। हरिद्वार स्टेशन पर पहुंचा, सत्य घटना है जो कि उस समय के अखबारों में भी आई थी। हरिद्वार स्टेशन पहुंचा, ट्रेन में जाकर बैठ गया। उसे संसारिक कोई ज्ञान नहीं, संसार के बारे में कुछ पता नहीं। ट्रेन में बैठा, फिर टीटी आया, पूछा टिकट कहाँ है? उसने कहा टिकट तो है ही नहीं मेरे पास। तो कहा निकलो बाहर। तो बाहर निकल गया और बैठ गया सामने एक जगह जाकर अपनी समाधि में। ट्रेन वहां रुकी थी, कहीं से आ रही थी। ट्रेन के जाने का समय हो गया पर ट्रेन चली नहीं रही। तो फिर मैकेनिक को बुलाया गया, इंजीनियर को बुलाए गए, एक्सपर्ट सारे आए, इंजन को चेक किया, सारे डिब्बों को चेक किया, S1 सारे जितने 12 डिब्बे जितने थे सारे के सारे चेक किया। कहीं पता नहीं चल रहा है क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है ऐसा, जबकि कोई खराबी कहीं नहीं पता पड़ रही। अचानक ही ट्रेन रुक गई, जो 10 मिनट का केवल समय था परंतु अभी आधा घंटा हो गया, एक घंटा हो गया, ट्रेन चली नहीं रही है। तो संकल्प आया क्या हो रहा है, ये क्या खराबी है? तो वो टीटी को संकल्प आया कि वो सन्यासी कहां है उसको ढूंढो, सबसे पहले कहां है उसको लेके आओ। तो उसको ढूंढा, वो तो बैठा था वहां पर जो स्टॉल होता है वहां पर नीचे तपस्या मग्न अवस्था में। उससे माफी मांगी कि भाई आ जाओ बैठो ट्रेन में। ट्रेन में बैठा और ट्रेन चालू। संकल्प में इतनी पावर है, संकल्पों की सिद्धि और साक्षात्कार किससे हो सकता है? वायरलेस के सेट से। तो बाबा ने पूछा है दीदी दादी को, क्या पूछा? वायरलेस का सेट है? क्योंकि सेवाओं का तो विस्तार होना है, कहां कहां किस किस को हैंडल करोगे। हॉल बन गया, भंडारा बन गया, परंतु जो सेवा केंद्र है उनको कैसे हैंडल करोगे यहां बैठकर? क्यों किसकी लगेगी? प्रजा की। जो वारिस है उनका क्या करोगे? एक सेकंड में कर्मातीत स्टेज के आधार से, एक सेकंड में कर्मातीत स्टेज के आधार से जो डायरेक्शन देना चाहो, जो कर्तव्य करना चाहो वो कर सकते हो। और जो आत्मा है उनको भी अनुभव होगा क्या? उनको भी अनुभव होगा कि हमको ये डायरेक्शन पहुंच रहा है, टेलीपैथी। यहां से संकल्प भेजा और वहां संकल्प मिला। किस आधार से होगा? कर्मातीत स्टेज। अभी अभी कर्मयोगी और अभी अभी कर्मातीत, ये जब अवस्था होगी तब साक्षात्कार करा सकोगे। और क्या होगा? संकल्पों की सिद्धि। हमें याद है संकल्पों की सिद्धि ऐसा एक सब्जेक्ट है कि हर आत्मा जो भी ब्राह्मण बनती है कभी ना कभी जीवन में अनुभव करती ही है कि जो संकल्प किया वो पूरा हुआ। ऐसा शायद ही कोई आत्मा होगी, शायद ही ऐसी कोई आत्मा होगी कि जिसके जीवन में ऐसा कोई अनुभव नहीं है कि जिसने संकल्प किया और वो साकार हो गया। हमने सोचा ये मिलने हमसे आ जाए, वो आ गया। हमें भी याद है हमारे अस्पताल में एक छोटी बच्ची भर्ती थी 12 साल की, गुड़िया जिसका नाम था। किसी और विभाग में थी वो, क्योंकि वो 12 साल की है तो बच्चों के डॉक्टर उसे देख रहे थे। 15-20 दिन से उसका बुखार नहीं जा रहा था, कभी 101 कभी 102 कभी 103, हर दिन और एक्सटेंसिवली इन्वेस्टिगेटेड, ऐसी शायद ही कोई जांच थी जो रह गई थी। फिर उसके पिताजी हमारे पास भी आए कि आप भी देखो, तो हमने कहा ठीक है। फिर वो हमारे इधर आई, हम तो 15 साल के ऊपर वालों को देखते हैं, तो हमारे पास वो कुछ दिन थी, हमने भी काफी जांच सब किया पर कुछ ऐसा ठोस कहीं नहीं मिला। फिर भी सोचा कि शायद कहीं टीबी है और उस हिसाब से उसको दवाई चालू कर दी। 10-15 दिन हमने रखा और उसको हमने फिर छुट्टी कर दी। फिर बुखार भी चला गया, उसको बुखार आया नहीं 4-5 दिन, तो हमने छुट्टी कर दी। छुट्टी करने के बाद में वो आई नहीं, 1 मास चला गया, 2 मास चला गया, पता नहीं कहाँ चली गई, कोई खबर भी नहीं उसकी। हमने तो बुलाया था उसको, क्योंकि हमको भी जो हमने दवाई दी थी उससे पता नहीं वो ठीक हुई या नहीं हुई उसकी वजह से। तो हमने सोचा पता नहीं आ क्यों नहीं रही है। तो मुझे याद है अचानक एक दिन, 2-3 मास हो गए, अमृत वेले यही शांति स्तंभ पर हमने अचानक जैसे उसका ख्याल आया कि वो आई क्यों नहीं अब तक, और उसका क्या हुआ, ठीक हुई या नहीं हुई, या कोई बहुत बड़ी बीमारी तो नहीं निकल गई, या कुछ तो नहीं हुआ। हमने संकल्प किया ये आत्मा जहां भी होगी आज 12 बजे के अंदर हमारे ओपीडी में आ जाए, जहां कहीं भी होगी। और ये संकल्प किया और हम भूल गए। फिर तो जैसी दिनचर्या है उस अनुसार सब चालू हो गया और लगभग 12 बजने ही वाले थे, 15 मिनट ऐसे कुछ थे, 10 मिनट, अचानक एक छोटी सी वही लड़की भाग के आई सीधा अंदर और एकदम हमको पकड़ लिया। भैया, वो भैया कहती थी तो हमने पूछा तुम कहाँ से आई, पिताजी कहाँ है? वो बोले पिताजी तो पैदल आ रहे हैं, मैं वो भाग के आई थी। मैंने कहा आप कहाँ थे? वो कहा मैं तो घर पे थी। मैंने कहा आप ठीक हो? हाँ एकदम ठीक थी। मैंने कहा आए क्यों नहीं? ठीक थी इसके लिए तो नहीं आई। तो हमको बड़ी खुशी हुई। तो जो आज बाबा ने कही संकल्प सिद्धि, जो संकल्प हम करें वो सिद्ध हो जाए, उस संकल्प में उतनी प्यूरिटी भी हो, उस संकल्प में उतनी निस्वार्थ भावना भी हो, उस संकल्प में उतनी अशरीरी अवस्था भी हो, मन उतना निर्बंधन भी हो, तो ये जो बाबा ने आज अभ्यास कहा है दीदी दादी से कि ये वायरलेस का सेट तैयार करो, ये वायरलेस का सेट अपने पास रखो, महारती आत्माओं का यही पुरुषार्थ है कि संकल्पों के द्वारा डायरेक्शन, कहां कहां डायरेक्शन दोगे? ये टेलीग्राम, टेलीग्राफ, पत्र व्यवहार कार्य नहीं करेगा, कुछ भी सब ठप हो जाएगा। तब कार्य करेगा केवल एक शक्ति, संकल्पों की शक्ति। तो इसका अभ्यास अभी से करना है, संकल्पों की सिद्धि का अभ्यास, संकल्पों की सिद्धि, जो हम संकल्प करें उसे चेक करना, प्रैक्टिस करना कि कितना साकार हुआ है वो, चाहे वो पुरुषार्थ का हो चाहे वो सेवा का हो। तो अभी आज की मुरली शुरुआत करते हैं। ये मुरली हम पढ़ रहे थे तो ऐसे लगा जैसे सारी ही मुरली सफलता के ऊपर है, जैसे सफलता के लिए बाबा ने बहुत सारी भिन्न 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 युक्तियां बताई है हर जगह, ये भी करो ये करो तो सफलता होगी, वो करो तो सफलता होगी, ऐसा किया तो सफलता होगी। तो बाबा ने शुरुआत कहां से किया? कौन किसको देख रहा है? बाप दादा अपने भुजाओं को देख रहा है, भगवान की भुजाएं, कितना बड़ा सम्मान है, कितना ऊंचा सम्मान है। किसके भुजाएं हैं हम? स्वयं भगवान की भुजाएं, भगवान के राइट हैंड। एक एक भुजा में कितनी विशेषता है, एक एक भुजा क्या कर रही है? सेवा में तत्पर है, अथक है। एक एक भुजा राइट हैंड है। राइट हैंड अर्थात क्या परिभाषा दी है बाबा ने राइट हैंड की? माताओं की तरफ से क्या परिभाषा है राइट हैंड की? हर संकल्प और हर कदम बाप दादा के डायरेक्शन प्रमाण, इन अलाइनमेंट विथ बाप दादा डायरेक्शन, बाप दादा के डायरेक्शन प्रमाण। मस्तक पर फरमान बरदारी के स्मृति का तिलक, एक भी संकल्प फरमान के बरखिलाफ ना हो, ऐसी जो स्थिति है जिन आत्माओं की वो है बाप दादा के राइट हैंड। जैसा वो है, जैसे उसको उनमें वो खुद दिखता है, जैसे दिखाया ना वो एक पिता रहते हैं, साहूकार है और एक दुकान है, तो अभी उनको वृद्धावस्था हो गई है, तीर्थ यात्रा के लिए निकलना है, कपड़ों की दुकान है, तो जो बेटा है उसका सोचता है अभी बेटे को सारा कार्यभार सौंप दूं, तो बेटे को दुकान में रखता है, पर ये सोचता है कि जब तक ये परिपक्व नहीं हो जाता मैं नहीं जा सकता, तो बेटा सामने और पीछे पर्दे के पीछे उसका बाप, और सुनता है ये किस तरह से व्यवहार करता है लोगों के साथ। तो पहला वर्ष जो होता है उसमें बेटा कहता है कि ये वस्तु मेरे पिताजी इतने दाम में देंगे ही नहीं, ये वस्तु मेरे पिताजी इतने दाम में देंगे ही नहीं। उसके पिताजी कहते हैं अभी परिपक्व नहीं हुआ है, अभी टाइम है, अभी मेरे जाने का समय नहीं है। फिर नेक्स्ट ईयर वो कहता है मेरे पिताजी और मैं इस वस्तु को इस दाम में हम दे ही नहीं सकते। उसके पिताजी कहते हैं अभी भी परिपक्व नहीं हुआ है। तीसरा वर्ष फिर बेटा कहता है मैं इस वस्तु को इतने दाम में नहीं दे सकता। पीछे से बाप कहता है अब ये मेरी भाषा बोलने लगा है। ये निमित्त भाव एक दूसरा सब्जेक्ट है, यहाँ किसी और संदर्भ में हम बात कर रहे हैं कि वही गुण जो बाप में है वो आ गए उसमें, तब उसके पिता सोचते हैं कि अब ये मेरी भाषा बोलने लगा है, अब मैं निश्चिंत होकर तीर्थाटन के लिए जा सकता हूँ। तो हम सब आत्माएं कौन है, जो कर्तव्य उसका है, वो कर्तव्य हमारा है, आधा आधा नहीं पूरा, जैसा वो है वैसे हम है, वो विश्व कल्याणकारी है तो हम भी विश्व कल्याणकारी ही है। विश्व की सेवा और बाप की सेवा सो हमारी सेवा, इसी मुरली में है। तो हम सब कौन है बाप दादा के राइट हैंड, एक एक संकल्प और एक एक कदम श्रीमत प्रमाण, कदम अर्थात संकल्प, कदम अर्थात कर्म, कदम अर्थात बोल, कदम अर्थात दृष्टि, कदम अर्थात वृत्ति, कदम अर्थात कदम कदम अर्थात कदम। एक एक कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले पांडवों से मुलाकात की है बाबा ने, एक एक कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले, कितने पद्मा पद्म भाग्यशाली हो इसका हिसाब निकालो, कहा ना। तो हम सभी आत्माएं कौन है, भगवान की भुजाएं, ऐसी भुजाओं को देखकर बाबा भी हर्षित होते हैं। कौन सी भुजाएं, जो राइट हैंड है, कौन सी भुजाएं जो हर डायरेक्शन प्रमाण, हर कदम और हर संकल्प डायरेक्शन प्रमाण श्रीमत प्रमाण चलने वाले, ऐसे फरमान बरदारी के स्मृति का तिलक लगाने वाली आत्माएं वरदान में है आज बाबा को अति प्रिय। ऐसे राइट हैंड के राइट हैंड में क्या है, गोला है, कौन सा गोला है, विश्व की बादशाही का, विश्व के राज्य अधिकार का गोला है। तो बाबा क्या कह रहे, किसका चित्र है, कृष्ण का है या आपका है, अकेले कृष्ण का है या आपका भी है, पांडव भवन में चित्र है कहाँ, गेट पर एंट्री करते ही श्री कृष्ण का चित्र है। कैसा है वो चित्र, अपनी आंखों के सामने लाओ उस चित्र को, एक हाथ में गोला है और एक पैर से क्या कर रहा है, पुरानी दुनिया को लात मार रहा है, और हाथ में क्या है, स्वर्ग की बादशाही, दूसरे हाथ में क्या है, मुरली है, बांसुरी है दूसरे हाथ में, और रेंगता हुआ है, रेगड़ी पहनता हुआ। तो ये चित्र किसका है, हमारा ही है, तो उसको वहां से हटा के अभी किसको रखना है वहां पर, स्वयं को। ब्रह्मा बाबा ऐसे कहते ना, मैं अभी जाकर बाबा को नशा है कि बाबा अभी जाकर मिचनू बनेगा, तो ऐसा नशा। तो ये जो गोला है विश्व की बादशाही का, विश्व के अधिकार का, तो स्वयं हम विश्व का अधिकार लेने वाले। कौन ले सकता ये राज्य अधिकार? जो यहां स्वराज्य अधिकारी है। फिर बाबा ने यहां टॉपिक चेंज किया है। क्या कहा? बहुत सारे प्रश्न पूछे, स्वराज्य कैसा चल रहा है, कारोबार कैसा चल रहा है, ठीक चल रहा है, लॉ एंड ऑर्डर प्रमाण चल रहा है। कई मुरलियों में बाबा ने दरबार लगाने के लिए कहा है। तो वही बात यहां है कि कर्मेंद्रिया जो है हमारे वश में है, कहीं धोखा तो नहीं दे रही है कोई कर्मेंद्रिया, आंख धोखा तो नहीं दे रही है, पर चिंतन तो नहीं जा रहा है कानों से, मुख से कोई अपवित्र वचन तो नहीं निकल रहे, कदम कहीं गलत राह पर तो नहीं चल रहे है। बाबा ने कहा जो भी तुम्हारे कारोबारी है ठीक चल रहे है, लॉ एंड ऑर्डर प्रमाण चल रहे है, श्रीमद प्रमाण चल रहे है। कभी हमेशा मुरलियों में बाबा कहते हैं तीन मंत्री मन बुद्धि संस्कार, मन में मिलावट तो नहीं है, बुद्धि कहीं भटक तो नहीं रही है, संस्कार कहीं बंदर का नाच तो नहीं नचा रहे है। इस तरह से स्वयं स्वयं की चेकिंग करना। अभी जो संस्कार भरेंगे वही 21 जन्म चलेंगे, अभी जो कुछ यहां भरेंगे, अभी जो राज्य है वही राजे बनेंगे, एक दो जन्म के राजे नहीं, हमेशा के राजे। तो ऐसे दिव्य संस्कार हमें यहां अपने अंदर भरने हैं, संपूर्ण स्वराज्य अधिकार, इस देह पर भी अधिकार, इस मन पर भी अधिकार, बुद्धि पर भी अधिकार, इंद्रियों पर भी अधिकार, सब पर अधिकार। ऐसे जो राजे हैं, ऐसे जिनके अंदर संयम की शक्ति है, वही विश्व का राज्य ले सकते हैं, बाकी नहीं। फिर बाबा ने आगे क्या कहा? ऑस्ट्रेलिया वालों से मुलाकात, क्या कहा आगे? उनका एक विशेष गुण देखा, कौन सा? मर्यादा पुरुषोत्तम का, मर्यादा पुरुषोत्तम का गुण। मर्यादा पुरुषोत्तम अर्थात किसके लिए कहा जाता है? ये श्री राम के लिए, सीता के लिए नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के लिए कहा जाता है। और कृष्ण के लिए क्या कहा जाता है? कौन सा पुरुषोत्तम? लीला पुरुषोत्तम। कृष्ण के लिए कहा जाता है लीला पुरुषोत्तम, और राम के लिए कहा जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम। प्रातः काल उठिके रघुनाथा, मात पिता गुरु नाव ही माथा। सुबह सुबह उठ के कितना गायन है भारत में, श्री रामायण का तो जहां जहां गायन है, श्री राम का चरित्र आदर्श चरित्र गाया हुआ है। कोमल स्वभाव छुवत छल नाही, जिसके स्वभाव को छल नहीं छूता, ऐसा उसका स्वभाव है। बार बार लक्ष्मण को क्रोध आता है, हर जगह उसको क्रोध आता है। जल सम वचन बोले रघुनाथा, परंतु राम के वचन कैसे है? शीतल है, जल के समान है, आत्माओं को ठंडक पहुंचाने वाले है, पाषाण को भी चैतन्य बनाने वाले है। चरण रज चाहती कृपा करऊ रघुवीर, तो कोमल चित अति दीन दयाला, बहुत गायन है मानस में, कोमल चित है उसका अति दीन दयाला, बिनु कारण रघुनाथ कृपाला, बिना कारण के कृपा करने वाला है, हृदय में करुणा है, सिंधु है करुणा का, सब पर कृपा करने वाला है। यहां तक कि दिखाया है कि रावण को जब मार दिया तो लक्ष्मण से क्या कहा? जाओ उससे जाकर सीखो नीति शास्त्र। शत्रु पर भी कृपा करने वाला है, ऐसा वो राम जिसका गायन भक्ति में भी है। बाबा हमें कह रहे मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा के लकीर के अंदर रहने वाले। फिर याद किया सीता को, सीता भी एक अद्भुत सा चरित्र है रामायण में। देखा जाए तो सारी रामायण की धुरी सीता है, राम और रावण तो त्रिकोण के केवल एक कोण मात्र है, परंतु जो मुख्य पात्र है वो है सीता। तो सीता को कहीं अट्रैक्शन तो नहीं होता है, आकर्षण तो नहीं होता है रावण के? अभी वो तो बड़ा ही सरल सा रावण था, अभी तो रावण ने अपने रूप ही बदल दिया है, अपडेटेड वर्जन, आधुनिक रावण। एक बार किसी शायद ज्ञानामृत में आर्टिकल आया था, वो रावण अब के मनुष्य से बात कर रहा है और कह रहा था मैं तो ये करता हूं, तुम तो ऐसे करते हो, बताओ कौन ज्यादा खतरनाक है, मैंने तो ऐसा किया था, मैंने तो सीता को छुआ तक नहीं था। ऐसे बहुत सारे उसमें प्रश्न है कि वो रावण यहां की मनुष्य जाति से बात कर रहा है। फिर भी मैं तुमसे तो अच्छा ही था, ऐसा वो रावण कह रहा है उसमें। तो सीता से ऐसा क्या हुआ कि वो लंका पहुंच गई? ऐसी कौन सी भूले उससे हुई? उसके भी पहले, सबसे पहले तो बुद्धि भ्रमित हुई उसकी, पहचान नहीं पाई किसको, हिरण को। सबसे पहले तो क्योंकि सोने का मृग तो कोई होता ही नहीं है, वहां उसकी सबसे पहली गलती है कि उस मृग को ही नहीं पहचान पाई, ये मृग कौन सा है, क्या है ये मृग, और समझा ये सत्य है। एक तो ये गलती, दूसरी अविश्वास, अपने पति पर भी अविश्वास, जो कि विश्व जगत पालन कर जोई ताके राम नाम राम अस होई, जो राम है जो विश्व का भलन भरन पालन करता है, ऐसे राम पर भी अविश्वास कि ये आवाज राम की ही है। अविश्वास लक्ष्मण पर भी अविश्वास, और उसके आगे की गलती, तीसरी गलती, रावण को पहचान नहीं पाई। रावण किस वेश में आया था? रावण के वेश में नहीं, साधु के वेश में आया था, पहचान नहीं पाई। ये तो वैदेही है, जनक की पुत्री है, वैदेही है, फिर भी पहचान नहीं पाई। विदेह का जिसको अभ्यास था उसे भी विदेह का, इसके लिए इसे वैदेही कहा जाता है, सर्वोत्तम नारी कहा जाता है, तपस्विनी कहा जाता है, आदर्श नारी कहा जाता है, फिर भी पहचान नहीं पाई, ऐसा दिखाया है। तो तीसरी गलती ये हुई, और चौथी गलती, मर्यादा की लकीर का उल्लंघन कर दिया। चार गलतियां हुई। सबसे पहली गलती कौन सी? हिरण को पहचान नहीं पाई, मोह उत्पन्न हुआ, लगाव उत्पन्न हुआ, लोभ उत्पन्न हुआ हृदय में। तो ये जो कहानी है, ये रावण ने किसको चुरा लिया? सीता को। और यहां पर रावण ने सीता को या आत्मा की शीतलता को चुरा लिया। तो ये जब गलतियां होती है, लोभ, अविश्वास, संदिग्ध हो जाता है परमात्मा है या नहीं है, ये भक्ति की बात है। और यहां बाबा पर जब विश्वास डावाडोल होता है तब। तीसरा, पहचान नहीं पाना माया के स्वरूप को। यहां पर भी बाबा ने प्रश्न पूछा है, माया की एक नॉलेज है, जिनके पास नॉलेज है वो माया वहां पर आ नहीं सकती। माया की नॉलेज अगर कम है तो, कहीं जगदीश भाई जी ने अपने एक किसी लेख में लिखा है कि भगवान को पहचानना बहुत ही कठिन कार्य है, कोटों में कोई और कोई में कोई ही उसे पहचान सकता है, परंतु माया को पहचानना उससे भी कठिन कार्य है। वो जो कोटों में कोई और कोई में कोई है, उनमें से कोटों में कोई और कोई में कोई माया को पहचान सकता है। इतना माया का रूप बहुरूपी है, हर दिन उसका स्वरूप बदलते रहता है, ये भी माया है ये जान लेना। बाबा ने कहा ये नॉलेज अगर है तो माया आ नहीं सकती, रावण आ नहीं सकता। अगर ये ज्ञान है, रावण का ज्ञान, रावण की नॉलेज, तो रावण की अट्रैक्शन तो नहीं होती है। प्रश्न पूछे है कई सारे बाबा ने, रावण की मित्रता कब से है? बड़ी प्रगाढ़ और बड़ी गहरी मैत्री है, द्वापर दो युग से वो निभाना चाहते हो? प्रश्न पूछा बाबा ने, सबने क्या कहा? नहीं। तो रावण से मैत्री, विकारों से दोस्ती, विकारों के वशीभूत हो जाना बार बार, यही है विकारों से जैसे दोस्ती निभा रहे हैं अब तक। तो ये बात यहां पर बाबा ने कही। और फिर यही रावण क्या बन जाएगा? फिर एक दिन किसी मुरली में बाबा ने कहा है ना, यही तुम्हारा पहला भक्त होगा, इसी को तुम धन्यवाद करोगे। क्या करेगा? सतयुग में तुम्हारे लिए जल्दी जल्दी और सुंदर सुंदर राज्य तैयार करेगा, जैसे कि अपनी दसों भुजाओं की, दशानन कहा जाता है, दशग्रीव रावण के लिए नाम है, दशानन, अपनी दसों भुजाओं से क्या करेगा? तुम्हारे लिए तुम्हारी सेवा करेगा। जो पांच तत्व है वो महल बन जाएंगे, उससे राज्य निर्माण होगा, और जो पांच विकार है वो क्या हो जाएंगे? रूपांतरण हो जाएंगे। किसमें? पांच दिव्य गुणों में। उस दिन दादी जान की क्लास में कह रही थी ना, पांच दिव्य गुण कौन से, पवित्रता, सत्यता, धैर्यता, नम्रता, मधुरता। तो पांच विकार का क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन, सब्लिमेशन, रूपांतरण हो जाएगा, पांच दिव्य गुणों में परिवर्तित हो जाएंगे। पांच विकार पांच दिव्य गुणों में, पांच तत्व राज्य तैयार करेंगे। रावण को अभी ये पता है कि राज्य जाने वाला, इसके लिए तुम्हारे लिए जल्दी जल्दी सुंदर सुंदर राज्य तैयार करेगा। जैसे गायन है दसों नाखूनों का, दसों का कहा है या बीस का है, तो बाबा ने क्या कहा दसों नाखूनों का जोर लगा के, जैसे वहां कहते हैं कोई भी कार्य, तो रावण तुम्हारे लिए कार्य करेगा, फिर तुम उसको धन्यवाद करोगे। ये यहां पॉइंट पूरा हुआ। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट बाबा ने जो कहा, क्या पूछा, किस रफ्तार से चल रहा है पुरुषार्थ, कहां तक पहुंचे हो, दिल तक तक, उसमें भी किस नंबर पर पहुंचे हो। तो यहां पर क्या कहा बाबा ने आगे, किस रफ्तार से चल रहे हो दिल तख्त पर, उसमें भी चांस लेने वाले कौन हो, चांसलर हो। तो बाबा ने इनके साथ पिकनिक की, ऐसे बाबा कह रहे, और एक एक गिफ्ट दी, एक एक विशेष श्रृंगार दिया। कौन सा श्रृंगार, शुभ चिंतक की चिंदी, शुभ चिंतक की चिंदी, जैसे आत्मा चमक रही है वैसे ये भी चमक, चाहे कोई भी बात आ जाए इसको अगर स्मृति में रखो तो समाप्त तो हो जाएंगी बातें। पर चिंतन का त्याग, पर चिंतन, क्या कहा बाबा ने, पर चिंतन का त्याग, और हर आत्मा के प्रति प्योर एंड पॉजिटिव फीलिंग्स, जिसको शुभ चिंतक मणि कहा है, हर एक आत्मा के प्रति कैसे बन जाए हम शुभ चिंतक मणि, पर चिंतन का त्याग। ये ग्रुप ही शुभ चिंतक का ग्रुप है बाबा ने कहा। तो शुभ चिंतक का ग्रुप देखो कितने सारे नाम दिए, पावरफुल स्टेज, पावरफुल सर्विस, और फरिश्तों की सभा, ऐसा बन जाएंगे, पावरफुल वाइब्रेशंस हो जाएंगे यहां के। तो पर चिंतन में मैं आज सोच रहा था, इसमें जो एक दूसरी जो बात आती है वो आती है लगाव की भी बात, यहां आती है जो आज का स्लोगन है, किसी में यदि लगाव है उसका चिंतन करना, ये भी परचिंतन है। कोई अगर कुछ श्रीमद के विरुद्ध में कुछ कहे और उसका हम चिंतन कर रहे हैं, वो भी परचिंतन है। किसी से अति घृणा है उस आत्मा का भी चिंतन, वो भी परचिंतन है। चाहे लगाव हो, चाहे घृणा हो, या व्यर्थ की बात हो, ये सभी परचिंतन की श्रेणी में आता है। किसी का चिंतन करना बाबा को छोड़कर और लंबे समय तक करना, उससे आत्मा में आसक्ति उत्पन्न होती है उस आत्मा के प्रति, और इधर का जो प्यार है वो कम हो जाता है। तीसरा कोई आया तो तीसरा नेत्र बंद। दिखाया है उपनिषदों में, कथा है एक सन्यासी की, जिसे इच्छा हुई कि मुझे स्वर्ग का पद प्राप्त करना है, और कठोर तपस्या करना चालू करता है, एक ही लक्ष्य होता है इंद्र पद प्राप्त करना है, उपनिषदों में ये कथा है, और घनघोर तपस्या करता है, और उसी वन में एक कन्या थोड़ी सी कुरूप उसको जब देखती है तो उसके मन में थोड़ी भक्ति जागृत होती है, और उसको लगता है कि मैं इस सन्यासी, इस योगी की थोड़ी सेवा करूं, तो उसके लिए कभी जल लाती है, कभी फल लाती है और वहां रख देती है। वो जब भी उसकी आंख खुलती है कभी कभार थोड़ा बहुत खा लेता है, और धीरे धीरे तो वो वैसा के वैसा पड़ा रहता है, क्योंकि जैसे जैसे साधना इसकी सघन होती गई, ये भी सारा जैसे छूटता गया। यहाँ एक और एक सूक्ष्म बात है, जैसे ही योग मार्ग पर हम चलते हैं, हमारा शरीर किसी और विधि से कार्य करने लगता है, फिर जितनी कम से कम भोजन में अधिक से अधिक पावर आत्मा में आती जाती है, शरीर भी उसी आधार से चलने लगता है। विज्ञान इसे नहीं समझा सकता, परंतु ये यौगिक क्रियाएं बहुत सारी है जिससे इस तरह के शरीर में भी बदलाव होने लगते है। तो वो योगी तपस्या करने लगा, फिर उधर इंद्र का जैसे एज यूजुअल सिंहासन डोलने लगा, जैसे दिखाता है शास्त्रों में, हमेशा भयभीत होता है, कभी यहां भागता है, कभी वहां भागता है, कभी इसके पास जाता है, तो उसको चिंता होने लगती है कि अभी मेरा पद तो जाने वाला है। तो वो युक्ति रचता है, वो जो कन्या होती है वो जिस सरोवर से जल लाती है उस सरोवर में जैसे ही हाथ डालती है उसका रूप परिवर्तन हो जाता है, और वो अति सुंदर बन जाती है, और उसको भी नहीं पता चलता ये क्या हो गया अचानक से। ये एक जैसी युक्ति है उसकी तपस्या भंग करने के लिए। तो वो युवती फिर से अपना चालू है, जा रही है, फल रख रही है, और अचानक एक दिन उस सन्यासी की आंखें खुलती है और सीधा उस पर दृष्टि जाती है। थोड़े देर के लिए दृष्टि जाती है और वो आंख फिर से बंद कर लेता है। फिर ये जो कन्या है ये सोचती है, बहुत रोने लगती है कि मैंने इस योगी की तपस्या भंग कर दी। एक तरफ तो आत्मग्लानि का भाव इसमें आ जाता है, जैसे मैंने इसको भ्रष्ट बना दिया, उसने मुझे देखा और शायद उसकी आंखों में भी कुछ हलचल थी। और दूसरी तरफ इसे खुशी भी होती है कि मैं कितने समय से इसकी सेवा कर रही हूं, तो ये कम से कम देखे तो कौन है जो इसकी सेवा कर रही है। दोनों मिश्रित भाव उसके मन में प्रकट होते हैं, परंतु वो सोचती है कि अभी मैं यहां नहीं रहूंगी, मैं यहां से चली जाऊंगी। दूसरे दिन उसी योगी के पास आती है और उसको कहती है, विनंती करती है। वो आंख खोलता है और उसको कहती है कि मुझे कोई काम है, मैं अभी दूसरे गांव जा रही हूं। वो कहता है, उसको आशीर्वाद देता है कि जाओ। वो भी आशीर्वाद देती है, वो चली जाती है। तपस्या फिर से आरंभ। इतनी भयंकर तपस्या करते रहता है कि इंद्र को ही एक दिन नीचे आना पड़ता है धरती पर और उसके चरणों में गिर जाता है। क्या चाहिए तुम्हें, बोलो। इंद्र पद चाहिए तो ले लो, ये स्वर्ग खाली पड़ा है, तुम ही इसके योग्य हो। बहुत उससे विनय प्रार्थना करता है। सन्यासी कहता है, मुझे स्वर्ग की अब कोई कामना नहीं है। मैंने भले तपस्या चालू की थी स्वर्ग की प्राप्ति करने के लिए, परंतु अभी मुझे स्वर्ग की कामना नहीं है। इंद्र तो और प्रभावित हो जाता है, अरे मैं अभी क्या दूं तुमको, क्या तुम्हें मोक्ष चाहिए, मैं तुम्हें मोक्ष भी देने के लिए तैयार हूं, क्या चाहिए बोलो बस तुम। वो कहता है, मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए। तो बोलते, तुम्हें चाहिए क्या? वो कहता है, वो युवती कहां है? लगाव पकड़े रहता है, उसमें समय की कोई सीमा नहीं। जिससे लगाव हो गया, जिससे मोह हो गया, व्यक्ति उसी का चिंतन करते रहता है। इंद्र को कहां इतना बुद्धिमान है, पता चलता है। ये तो उपनिषदों में कहानियां दिखाई है। तो जहां लगाव है, आज के स्लोगन में भी है ना, वहां अलबेलापन होगा पुरुषार्थ में। वो पुरुषार्थ, वो तपस्या इतनी तीव्र नहीं हो सकती जहां लगाव है। तो ये जो लगाव जब होगा तब परचिंतन होगा, और परचिंतन संपन्न बनने नहीं देगा। तो यहां बाबा ने क्या कहा, परचिंतन को त्याग दो, त्यज दो परचिंतन को, केवल तलाक दे दो, डिवोर्स कर दो, छोड़ दो उसको हमेशा के लिए। ये यहां पूरा हुआ। उसके बाद बाबा बात कर रहे, ऐसी नौ भागों में इस मुरली को हमने विभाजित किया है जो हम अंत में समराइज करेंगे। उसके बाद निर्विघ्न सेवाधारी की परिभाषा यहां दी है बाबा ने। निर्विघ्न सेवा कब होगी? वो जब सेवा में सबसे बड़ा विघ्न कौन सा है, संकल्प और संस्कारों का ही विघ्न है। संकल्प संकल्प से टकराते हैं, संस्कार संस्कार से टकराते हैं, बोल बोल से टकराते हैं, स्वभाव स्वभाव से टकराता है, तब विघ्न पड़ते हैं सेवाओं में। ये दो को हटा दो तो क्या हो जाएंगे, निर्विघ्न सेवाधारी। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है बेहद की वृत्ति। ये नहीं समझो कि ये ऑस्ट्रेलिया की सेवा है, ये जर्मनी की सेवा है। बाबा यहां इस संकीर्णता से बाहर निकालने का प्रयत्न कर रहे हैं। वसुधैव कुटुंबकम, वैश्विक भावना, सार्वभौमिक भावना कि सारा परिवार हमारा है। जो कुछ दिन पहले मुरलियों में कहा था ना, ऐसे तो नहीं समझते कि ये वैज्ञानिक लोग नास्तिक है, नास्तिक भल है परंतु तुम्हारे ही भाई हुए, ब्रदरहुड है, बाप के ही बच्चे हैं, तो सभी के प्रति, वो दूसरे संदर्भ में कहा था, परंतु यहां विशाल भाव, सब जो बाप की सेवा है, जो विश्व की सेवा है, वो हमारी सेवा है। जहां पे भी जाओ सब हमारा है, ये यज्ञ हमारा है। जैसे वो उदाहरण बताया ना, वो जो बेटा है अगर कुछ नुकसान हो जाए तो उसको कितना फील होगा। जब तक ये कहता रहता कि पिताजी का है वो देख ले, नहीं, अभी वो अपना समझने लगा है। यहां अपनापन है, यहां की हर वस्तु, यहां की हर चीज हमारी है। हम कोई भी चीज को, चाहे वो चाय हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो या कुछ भी हो, हम इसे वेस्ट नहीं कर सकते, ना ही यहां कोई गंदगी फैला सकते है। ये स्वच्छ परिसर है, कहीं पर भी हम थूक भी नहीं सकते यहां वहां, इसका भी ध्यान रखना है। जो उचित स्थान है वहां पर ही वो कार्य किया जाए। ये शीश महल है संसार के लिए। तो बेहद की वृत्ति। फिर बाबा कह रहे और क्या करोगे, कौन सी, किसी ने कहा सूक्ष्म सेवा, बाबा ने कहा और क्या करोगे, वीआईपी, वीआईपी को लाने की बात कही है। कैसा वीआईपी लेके आओ, क्या करो, वो वीआईपी क्या करे, जो भारत की सरकार को उनका स्वागत करना पड़े, सरकार तक आवाज पहुंच जाना, ये क्या है, जैसे सेवा की आवाज को बुलंद करना। अभी तो क्या बजा रहे हो, तुतारिया बजा रहे हो, क्या बजानी है, शहनाइयां बजानी है, प्रत्यक्षता की शहनाइयां, क्या बजाना है, जय जयकार की शहनाइयां, बिगुल बजाना है। तो सेवा कैसी, सेवा का आवाज बुलंद करो, कोई बंद कर दो माता को तो बस हेलो तो सेवा का आवाज बुलंद। यहाँ के कुंभकर्णों को जगाना है। यहाँ के लोग कैसे सोए हुए हैं, खर्राटे नहीं, उठते हैं और क्या कहते हैं, क्या। और जो व्यक्ति बहुत ही प्रगाढ़ निद्रा में सोया हुआ है, अगर उसको कोई जगा दे तो सबसे पहली रिएक्शन क्या होती है, क्रोध, क्योंकि किस स्वप्न के जहान में है, आहा हा हा, ठंडी हवाएं बह रही है और उड़ रहे हैं और क्या क्या दिख रहे हैं, न मालूम क्या क्या खा रहे हैं वहां पर स्वप्न में, और अचानक कोई आके उठा दे तो क्रोध। तो जो आत्माएं जो सोई पड़ी है उनको जगाने की विधि भी थोड़ी युक्तियुक्त तो होनी चाहिए, सीधा जाके जगा दो तो पता नहीं कौन सी रिएक्शन हो जाए। तो क्या कहते हैं और फिर खर्राटे लेने लगते हैं, फिर सो जाते हैं। उधर बाबा ने अमृत वेला एक इसी मुरली में कहा है कि शक्तियां दूसरों को जगाने वाली है, खुद सोने वाली नहीं है। एक बार हमको किसी ने बताया था कि आशा दीदी दिल्ली वाले बहनों को चित्र दिखा रहे थे, ये जो हमारा जो चित्र है कुंभकर्ण वाला, जिसमें कि ब्रह्मा कुमारी कानों में अमृत डाल रही है और कुंभकर्ण सोया पड़ा है। जो सेंटर की बहनें थी उनको कहा कि देखो इस चित्र को, तो बहनों ने कहा इसमें देखने का क्या है, ये तो हमने रोज समझाते हैं और इसमें देखा क्या देखने का। उन्होंने कहा ठीक से देखो, उस कुंभकर्ण को बैच लगा हुआ है कुंभकर्ण को भी बैच बनाया था, तो ऐसा ना हो कि दूसरों को जगाने वाले खुद ही सो जाए। क्योंकि तुम भक्ति में बाप को याद करते हो, बाप तुम्हें अभी याद करता है, भक्ति में तुम बाप का सिमिरन करते हो, अभी बाप तुम्हारा सिमिरन करता है, बाप तुम्हारा कब सिमिरन करता है, अमृत वेले सिमिरन करता है। तो जब तुम्हारे सिमिरन की माला बाप दादा अमृत वेले फेरते हैं, तब सो तो नहीं जाते हो। कुमार और कुमारियों से मुलाकात, दूसरों को जगाने वाले हो, खुद नहीं सो जाना है। तो वीआईपी की बात कर रहे हैं बाबा, ऐसा वीआईपी यहां ले आओ, तब आवाज होगा, तब ये कुंभकर्ण जागेंगे, तब प्रत्यक्षता होगी, तब प्रत्यक्षता के नगाड़े बजाएंगे। ये जो बेहद की वृत्ति की बात थी, इसमें मुझे और एक उदाहरण याद आ रहा है। किसी भाई ने हमको सुनाया था कि कुछ सेंटर के भाई बहने गवर्नर के पास गए और उनसे कहने लगे कि शिवरात्रि में आप हमारे पास आओ। शाम को दूसरे सेंटर के भाई बहने उसी गवर्नर के पास गए और कहने लगे आप उधर मत जाना, वो इतना अच्छा नहीं, आप हमारे पास आओ व्यंग की बात नहीं है, हंसी की बात नहीं है, ये सोचने की बात है कि हमारी कैसा दृष्टिकोण है, एक सेंटर दूसरा सेंटर, बाबा किस दृष्टि से देख रहा है कि सब कुछ हमारा है, सब कुछ यज्ञ है, एक ही देखो उसे, यज्ञ देखो, जो उसका कार्य है वो हमारा कार्य है, जो विश्व की सेवा है और बाप की सेवा है वो हमारी सेवा है। ये किस संकीर्णता में हम खो गए हैं, क्यों ये अनिश्चिंतता, क्यों ये डर है कि कहीं दूसरे हमसे आगे ना चले जाए। कहते हैं कि व्यक्ति जो होता है निरंतर इस भय में जीता है सारा जीवन, क्या वही भय हमको तो नहीं सता रहा है। एक सूफी फकीर था, उसने अपनी कब्र में एक बहुत ही अच्छी चीज बताई कि मेरी कब्र जब मरूंगा, और वो मरा उसके बाद उसी तरह उसकी कब्र बनाई गई। उसने कहा था वो सारे मनुष्य जाति के लिए व्यंग कर गया, उसने कहा जब मेरी कब्र बनाई जाएगी तो दरवाजा बनाना पर दीवार मत बनाना, और उस दरवाजे में बहुत सारे ताले लगाना, और चाबियां जो है वो समुन्द्र में फेंक देना, ऐसी उसने कब्र बनाई अपनी कि मनुष्य सोचता है सुरक्षित करूं सब कुछ, ताले लगाऊं, परंतु ये भूल जाता है कि जीवन तो संपूर्ण अनिश्चितता की जैसे धारा है, यहां कुछ भी निश्चिंत नहीं है, मृत्यु छोड़कर व्यंग कर गया ये है मनुष्य, गृहस्थियों के लिए छोड़ गया ये कि ऐसे ताले लगाते हो, इसको ताला उसको ताला, और दीवार ही नहीं है, वो तो देख ही नहीं रहे, सब कुछ ऐसा ही पड़ा है, सब कुछ यही रह जाएगा। तो इस संकीर्णता से स्वयं को बाहर निकालना है, ये जो ट्यूबुलर विजन है, छोटा देखना, बस हमारा देखे, हमारा सब ठीक है, हमारा डिपार्टमेंट ठीक है, बाकी जिधर जो हो रहा है होने, तो ये नहीं, सब हमारे है, सब अपने है। वसुधैव कुटुम्बकम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की कामना हमारे हृदय में है, शुभ चिंतक मणि है हम, ऐसी गिफ्ट हमें भगवान ने दी है, तो छोटे संकल्प हमारे मन में ना आए, श्रेष्ठतम संकल्प आए। उसके बाद बाबा ने क्या कहा, ऑस्ट्रेलिया वालों की शक्ति स्वरूप बैच लगाया हुआ, यूनिफॉर्म अच्छा है, थोड़ी तारीफ की, और स्वतंत्रता के संस्कार है, और अभी बाप के मीठे बंधन में जैसे कि बंध गए हैं, यहां पर भी अच्छे चल रहे, मर्यादा पुरुषोत्तम की धारणाएं धारण करने में भी अच्छे चल रहे हैं। और लास्ट में एक मंत्र दिया, कौन सा मंत्र दिया, मन मन अभव तो हमेशा देते हैं, आज कौन सा दिया, एक मंत्र फूका है कान में, कौन सा मंत्र फूका, रिस्पेक्ट क्या करो, रिगार्ड दो तो रिगार्ड मिलेगा, तो रिगार्ड देना ही लेना है। तो अगर इस मुरली को देखा जाए तो सफलता की जैसे क्या है, ये सारी सीढ़ियां है, सफलता सेवाओं में, सेवा केंद्र की वृद्धि में, एक जगह और भी कहा है निमित्त भाव, तो ये सारी बात, तो सबसे पहली बात सफलता कब मिलेगी, जब समझोगे कि हम भगवान की भुजाएं हैं एक, या समझोगे हम भगवान के राइट हैंड है, हर संकल्प डायरेक्शन प्रमाण, हर कदम डायरेक्शन प्रमाण, पहली स्टेप। दूसरी स्टेप स्वराज्य अधिकारी, जब स्वराज्य अधिकारी होंगे तब सफलता मिलेगी, धैर्यता का गुण भी इनमें बहुत अच्छा है, ये भी एक बात कहीं बीच में कही है। और तीसरी बात रावण के अट्रैक्शन में न आना, रावण के स्वरूप को जानना, रावण के भी नॉलेजफुल, जहां नॉलेजफुल है वहां रावण आ नहीं सकता, आगे पार्टियों से कहा है जहां नॉलेज है वहां कोई बंधन भी नहीं हो सकता, जैसे दिन और रात इकट्ठा नहीं हो सकते, जहां नॉलेज हुए, नॉलेज लाइट है और नॉलेज माइट है, ज्ञान प्रकाश भी है तो शक्ति भी है, और जहां ज्ञान का प्रकाश और ज्ञान का आलोक है वहां अंधकार तारीकी आ नहीं सकती। तो ज्ञान बंधन को, और ज्ञान और बंधन एक साथ नहीं हो सकते, तो जहां नॉलेज है वहां पर रावण की नॉलेज है, वहां रावण आ नहीं सकता, हिम्मत ही नहीं है। थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट, शुभ चिंतक मणि जहां हम बन जाए तो सेवाओं में सफलता होगी। पांचवी पॉइंट, बेहद की वृत्ति जब होगी तब शुभ चिंतक मणि हम बन जाएंगे। और छठवी पॉइंट, वो पांडवों से मुलाकात, पार्टियों में है वो भी, चलो वो भी पॉइंट है कि सारे पांडव जो है एक मत एक रस है, एक बाप एक संत एक मत, तो इसी से सतयुग के संस्कार, सतयुग की स्थापना होगी, वो दूसरी बात थी। तो फिर उसके बाद में सेवाओं में सफलता के लिए ऐसा कोई वीआईपी भी लाओ कि जो आवाज सरकार तक पहुंचे, रिगार्ड दो और रिगार्ड लो, निमित्त भाव, ये सारी जब बातें होगी तब सेवाओं में सफलता होगी। तो ये सारी मुरली जैसे कि सेवाओं में सफलता के लिए है। फिर पार्टियों में क्या कहा बाबा ने, सबसे पहले तो पांडवों से मिल रहे, क्या कहा, कदमों में जैसे पदम है, कितने पदम है गिनती करो, बाबा ने कहा सारे दिन भर में कितने पदमा पदम भाग्यशाली हो, जो ऐसे भाग्यशाली बने हो, और फिर आपकी जो यूनिटी है, घेराव है, माया यहां पर आ नहीं सकती, जो कहा ना मुरली अगर यहां चल रही है तो खिड़की के बाहर जैसे कि माया है जो यहां आ नहीं सकती, ऐसा अगर संगठन है, एक मत है, एक ने कहा दूसरे ने सुना, यह है स्नेह का रिस्पॉन्ड, एक ने कहा सब एक दो से संतुष्ट हो, खिटपिट तो नहीं है, निर्विघ्न चल रहे हो, निर्विघ्न चलने की विधि क्या बताई, स्वयं को निमित्त समझ के चलना, और जितना मनन शक्ति शक्तिशाली होगी, जितना मनन करोगे उतने ही स्टेज पावरफुल होगी, तो मनन की भी बात कही। फिर बाबा ने शायद बंधन वाली कुछ आत्माएं हैं उनसे मिल रहे, अपने आप को निर्बंधन महसूस करते हो, सदा हर बात में निर्बंधन महसूस करते हो, कोई बंधन तो नहीं है, तो यहां नॉलेज आ गया वहां बंधन हो नहीं सकता। उदाहरण दिया ब्रह्मा बाबा का, क्या उदाहरण दिया, जैसे बाप निर्बंधन है तो जैसे बाप वैसे बच्चे। उदाहरण दिया कौन सा, और एक उदाहरण दिया, नया जन्म हुआ है तुम्हारा, ब्रह्मा कुमार बन गए तो बंधन कैसा, बीती सो बीती, नया जन्म हुआ है तो पुराने संस्कार समाप्त। और लास्ट में तीसरा जो ग्रुप है उससे क्या कहा, सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है। तो ये जो भी समान हमने अब तक देखे, इन सबको एक एक करके बुद्धि में लाओ और इनमें स्थित होने का अभ्यास करो अगले 2-3 मिनट में। फिर हम लास्ट में फिर से मुरली को एक बार समराइज करेंगे। सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। सफलता होगी कि नहीं होगी ये प्रश्न ही नहीं उठता है। ये नशा है, सफलता का नशा, क्योंकि साथ कौन है ये अपने आप को निरंतर स्मरण कराना है। दूसरा पूछा बाबा ने, मास्टर शिक्षक बने हो, जैसे शिक्षक की क्वालिफिकेशन है वैसे आप सब कौन हो, मास्टर शिक्षक हो, तो सारी क्वालिफिकेशन आ गई है। फिर कहा बाप समान बने हो, जो कि हाजी कहा तो हाजी के जैसे गीत गाती है और नाचती है और दूसरों को सुनाते रहती है, सुनते भी है और सुनाते भी रहते हैं। और जो भक्ति की बात जो हमने कह दी, और लास्ट में एक बहुत अच्छी बात यहाँ कही, वो भी सेवा की वृद्धि का जैसे क्या है, एक साधन। तो इस फुलवाड़ी को किससे सींचना है, निश्चय और हिम्मत के जल से अगर सींचते रहो तो क्या हो जाएगा, वृद्धि होती रहेगी। ये एक अंतिम बात यहां बाबा ने कही है। तो अगर हम देखें इन पार्टियों से मुलाकात में भी सारा कुछ सफलता का जैसे आधार है। सबसे पहले तो यह नशा कि मैं पद्मा पदम भाग्यशाली हूं, यह नशा कि हमारे हर कदम में पदम है, यह नशा कि एक मत और एक रस है, और निमित्त समझना तो सफलता होगी, मनन करेंगे तो स्टेज पावरफुल होगी, ये सारे ही फिर से सफलता के आधार है। फिर निर्बंधन रखना स्वयं को, वो भी जैसे सफलता का आधार है, कोई भी बंधन ना हो। और सबसे बड़ा बंधन जो मनुष्य को पकड़ा हुआ है वो मैं का बंधन है। कोई एक चित्रकार होता है, उसकी प्रतिमाएं जो भी वो लिखता है, चित्र बनाता है, इतने सुंदर होते, इतने दिव्य होते हैं, जैसे कि सजीव लगते हैं वो। और बादशाह उसके पास आके कहता है कि तुम करते क्या हो, ऐसे चित्र कैसे बनाते हो? वो कहता है चित्र बनाने से पहले 7 दिन मैं तपस्या करता हूं। क्या तपस्या करते हो? पहले 3 दिन इस देह को भूलने का अभ्यास करता हूं, पहले दिन प्राणों पर अपनी बुद्धि को एकाग्र करता हूं। भक्ति की कथा है तो प्राणों पर, जिससे कि देह संयमित हो जाए। चौथे दिन जैसे मुझे देह भूल जाता है, फिर मैं ये भी भूल जाता हूं कि इस प्रतिमा को, ये जो चित्र बनाऊंगा, इससे मुझे क्या प्राप्ति होगी, क्या यश मिलेगा, क्या मुनाफा होगा, कितने पैसे मिलेंगे, ये धीरे धीरे सब कुछ भूल जाता हूं। और जैसे 6वें दिन पहुंचता हूं तो ये जो मैं है, जो बनाने वाला है, उसको भी भूल जाता हूं। और 7वें दिन फिर मैं अपना चित्र बनाता हूं कि जहां पर सब कुछ, ये जो मैं है, मैं का अतिक्रमण कर जाती है आत्मा, जैसे वो समाप्त हो जाता है, तो इसके बाद ये बनाता हूं, इसके कारण इसमें ऐसी दिव्यता झलकती है। तो मनुष्य का जो मैं है, उस मैं का अतिक्रमण कर देना, मैं तिरोहित हो जाए, समाप्त हो जाए, तो यही सबसे बड़ा बंधन है। इसी बंधन से ऊपर निकल जाना है। इस मैं को बाबा ने कहा मैं आत्मा बना दो, वो जो झूठा मैं है उसको समाप्त कर दो। तो निर्बंधन बन जाना, जैसा बाप वैसे बच्चे, क्योंकि नया जन्म हुआ है तो पुराना सब कुछ समाप्त। इसके लिए बंधन वहां हो नहीं सकता, ज्ञान और बंधन एक साथ नहीं हो सकते, इसके लिए ज्ञान को बढ़ाना है अपने। और अंततोगत्वा जो अंतिम जो मुलाकात है उसमें भी क्या कहा, निश्चय और हिम्मत के जल से इस फुलवाड़ी को सींचते रहो तो वृद्धि होती रहेगी। तो इस मुरली का फिर से आज ही सोने से पहले, इससे पहले कि कल दूसरी मुरली आ जाए, सोने से पहले एक बार फिर रिवाइज करना, या यहां इस क्लास में हमने जो बातें डिस्कस की है वो मन में दोहराना, दोहराते दोहराते, याद करते करते, या पढ़ते पढ़ते, फिर बाबा को गुड नाइट करके सो जाना। शांति।